पृष्ठ संख्या 89 अध्याय 7। श्यामा बीवी ने आंख उठाकर देखा तो सामने बसंती खड़ी थी। श्यामा बीवी सन्न सी रह गई। अरे तू कहाँ से आ टपकी, श्यामा ने कहा और झट से दरवाजा बंद करने के लिए उठ खड़ी हुई। किसी ने तुझे अंदर आते तो नहीं देखा, और श्यामा ने झट से उठकर सीढ़ियों वाले दरवाजे को बंद कर लिया और चिटकनी लगा दी। कहाँ से आई है, तूने क्या सूरत बना रखी है। बसंती मुस्कुरा रही थी, एक धीमी अंतर्मुखी सी मुस्कान जो जिंदगी के थपेड़े खाने के बाद इंसान के चेहरे पर अपने आप आ जाती है। कहाँ रही इतने दिन, तुझे अंदर आते किसी ने देखा तो नहीं ना। सच बता, इधर तेरा बाप मेरे घर के बीसियों चक्कर काट चुका है। हर बार मैं उससे यही कहती थी कि मैं कुछ नहीं जानती। यह सच भी है ना, मुझे क्या मालूम तू कहाँ गई है किधर गई है। मैंने तुझे घर से जाते तो नहीं देखा ना, कहाँ थी इतने दिन। श्यामा ने देख लिया कि बसंती पहले की तरह चहक नहीं रही है। बसंती का चेहरा थका थका सा था। पहले तो आते ही बतियाने चहकने लगती थी, ठिठोलियाँ करती, घर में कदम रखते ही इधर उधर फुदकने लगती थी। कुछ ही महीनों में मानो उसका सारा लड़कपन झड़ गया हो, गृहस्थिन बन गई हो। पृष्ठ संख्या 90। एक छीण खोई खोई सी मुस्कान बसंती के होठों पर कांप रही थी। बसंती को यहाँ से गए बहुत दिन नहीं बीते थे, यही 3-1 महीने ही बीते होंगे, पर बसंती पहले वाली बसंती नहीं रह गई थी। आँखें पहले जैसी ही बड़ी बड़ी थीं, पर जैसे उनकी नज़र अंदर की ओर मुड़ गई थी। कहाँ थी इतने दिन, इधर ही तो थी बीवी जी, छिपकर मिलने आई है। पगली, छिपकर मिलने आना था तो रात के वक्त आती, दिन में भी कोई छिपकर मिलने आता है। इधर दो घर छोड़कर तेरा बाप बैठा है, और पीछे इस तरफ तेरा चाचा और तेरी बहन मोहल्ले में सारा दिन घूमती रहती है। सभी मुझ पर शक करने लगे हैं कि मैंने ही तुम्हें कहीं भगा दिया है। बसंती अभी भी चुपचाप खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। किधर है तेरा घर वाला, अभी भी हॉस्टल में ही काम करता है। नहीं बीबी जी, वह तो यहाँ नहीं है, वह तो अपने गाँव चला गया है। क्या क्या गाँव गया है, तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया। बसंती चुप रही, कब गया था। हो गए कुछ दिन, तू कहाँ रहती है। मैं कहीं नहीं रहती बीवी जी। कहीं नहीं रहती, क्या मतलब। मतलब कि कभी कहीं रहती हूँ कभी नहीं, कहते हुए बसंती फिर पहले की तरह धीमे से हंसती। तुझे बेघर छोड़ गया है, सच सच बता क्या हुआ है। ठीक ठीक बता। श्यामा बीवी को खट से भास हुआ कि दाल में कुछ काला है, कि बसंती कुछ छिपा रही है। बसंती ने अभी बताना शुरू भी नहीं किया था कि श्यामा बीवी तर्जनी हिला हिला कर कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था या नहीं, बोल कहा था या नहीं। क्या बीवी जी। पृष्ठ संख्या 91। कि जिस आदमी के साथ भाग रही है वह अच्छा आदमी नहीं है। बसंती चुप रहे, ना हूँ ना हाँ, तुझे अकेला छोड़कर गांव चला गया, बुरा नहीं तो क्या है। बसंती को सदा श्यामा की आवाज़ में सद्भावना की भनक मिला करती थी, और वह अपने दिल की सब बातें उसके सामने उडेल कर रख देती थी। इसीलिए श्यामा बीवी के घर को वह अपना घर समझती थी, पर आज पहली बार उसे लगा जैसे श्यामा बीवी को इस बात से अधिक संतोष मिल रहा है कि दीनू अच्छा आदमी नहीं निकला और उसका कहा सच निकला। तुझे पैसे दे गया है। बसंती चुप रहे। बसंती को चुप देखकर श्यामा बीवी का संदेह पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया। तेरा घर वाला हॉस्टल से छुट्टी लेकर गया है, बसंती क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर धीरे से बोली, हमें हॉस्टल में से निकाल दिया गया था बीवी जी। निकाल दिया गया था क्यों, मैं वहां उसके साथ छिपकर रहती थी ना। छिपकर क्यों रहती थी, तूने उसके साथ शादी नहीं की थी। शादी तो की थी बीवी जी, मगर वहां औरतों को नहीं रहने देते। एक दिन किसी ने देख लिया और बड़े अफसर से शिकायत कर दी। श्यामा को फिर से अपनी सोच को सही साबित करने का मौका मिल गया। बीवी साथ में हो तो कोई नौकरी से थोड़े ही निकाल देगा। सच सच बता क्या हुआ था, उसके साथ शादी की थी। हाँ तो बीवी जी, कहाँ शादी की थी। बसंती को अभी भी इस बात में पूरी आस्था थी कि दीनू के साथ उसकी शादी बाकायदा हुई है, इसलिए उसने ब्यौरे के साथ श्यामा बीवी को बता दिया कि कैसे शादी हुई थी, कि जंत्री में से फाड़ी हुई भगवान जी की तस्वीर के सामने दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे कि बसंती ने उसके बालों, पृष्ठ संख्या 92 में 3 फूल खोंसे थे कि उसने भी बसंती के बालों में फूल टांके थे, कि उसने बसंती की मांग में लाल पेंसिल का रंग भरा था। बसंती ने सब सुना दिया, और यह भी उस समय आकाश में चांद खिला था और दोनों ने छिटकी चांदनी में विवाह की शपथ ली थी। अभी बसंती बोल ही रही थी कि श्यामा दांतों तले होंठ दबाए बार बार सिर हिलाने लगी। इसे तू ब्याह कहती है? मैंने तुझसे कहा था या नहीं? बोल, कहा था या नहीं? क्या बीबी जी, कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कि पहले ब्याह करना फिर उसके घर में पांव रखना। ब्याह तो किया था, इसे ब्याह कहते हैं? ब्याह पंडित करवाता है, दो आदमी जात बिरादरी के साथ बैठते हैं ताकि गवाही दे सकें कि हाँ ब्याह हुआ है। वाह री बसंती, बड़ी चालाक बनती है, न पंडित न गवाह, बड़ा ब्याह कराई। वह आदमी तेरे साथ मजा लूटता रहा और अब तुझे चकमा देकर भाग गया है। नहीं बीवी जी, बसंती ने धीमी सी आवाज में कहा। नहीं क्या? अगर वह कह दे कि उसने शादी नहीं की है तो क्या बीवी जी? कह दे तो कह दे। बसंती ने पहले की तरह कह दिया। तुझे बहुत रुलाएगा बसंती, तू कुछ नहीं जानती। रुलाएगा तो क्या बीवी जी, रुलाएगा तो रुलाएगा। बसंती की आंखें चढ़ी हुई थीं। श्यामा को लगा जैसे अभी तक बसंती के सिर पर से खुमार नहीं उतरा है। इसलिए वह स्याह और सफ़ेद की तमीज नहीं कर पा रही। पर यह इतनी अलसाई अलसाई क्यों है? पहले कितनी नटखट हुआ करती थी, फिर खटाक से श्यामा को पता चल गया। अरे, तेरे तो बच्चा होने वाला है। मैं भी कैसी पागल हूँ, तुझे देखे जा रही हूँ और समझ नहीं पा रही। चल बैठ इधर। और श्यामा बीवी ने बसंती को बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। पृष्ठ संख्या 93। बसंती का दिल भर आया। मनुष्य तकलीफों अड़चनों से नहीं घबराता, मुसीबतों से नहीं डरता, केवल उसे कहीं से प्यार मिलता रहे, आत्मीयता मिलती रहे, फिर वह एक नहीं मुसीबत के बीसियों काले कोस लांघ जाएगा। और इसी आत्मीयता की भूख उसे यहाँ खींच लाई थी। तेरे सिर पर से अभी खुमारी नहीं उतरी, जब उतरेगी तब तू नमक तेल का भाव जानेगी। अभी तो तू अंधी बनी हुई है, तू अभी भी समझती है कि वह आएगा। आएगा बीबी जी, बसंती ने कहा। और श्यामा बीबी फिर उसके चेहरे की ओर देखने लगी। बसंती ने जीवन में इतना अनुभव नहीं बटोरा था कि श्यामा की बात को समझ पाती, कि खुमारी क्या होती है, कि खुमारी से पहले क्या होता है और खुमारी टूटने के बाद क्या होता है। उसे इतना अनुभव भी नहीं था कि तुलना करके जान पाती कि दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया के व्यवहार को वह खरा माने या खोटा। जब से तीनू उसे छोड़कर गया था, वह एक तरह की धूप छाँव में रहती आ रही थी। उसे याद भी करती, उसके प्रति दिल में हिलोर सी भी उठती, उसे गालियाँ भी देती। आस का धागा अभी पहले जैसा ही मजबूत था, केवल पहले जैसा स्थिर नहीं था, कभी कभी डोल जाता था। फिर बता क्या हुआ, श्यामा बीबी ने पूछा। बसंती क्या बताए, बसंती को स्वयं बहुत सी बातें मालूम नहीं थी, पर वह श्यामा बीबी के साथ कुछ कुछ खुलने लगी। ओ बीबी जी, क्या बताऊँ, उसे नौकरी से नहीं भी निकालते तो भी हम ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं रह सकते थे बीबी जी। वहाँ सारा दिन कमरे में रहना पड़ता था, खिड़की में से बाहर भी नहीं झांक सकती थी, सारा दिन कमरे के कोने में छिपी बैठी रहती थी। बूढ़ा चौकीदार राउंड पर आता तो मैं कोने में फर्श पर लेट जाती थी, कभी दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो जाती थी। और बसंती फिर हंसने लगी। एक बार मैंने अपने ही आप चिटखनी खोलकर बाहर निकल आई, मुझे जोरों की प्यास लगी थी। मैंने कहा झट से नल पर से पानी पीकर कमरे में लौट आऊंगी। पृष्ठ संख्या, तभी किसी ने देख लिया होगा, श्यामा बोली। नहीं बीबी जी, पता नहीं कैसे हुआ, पर दीनू कहता था, मंगलू रसोइये को शक हो गया था, उसी ने शिकायत की। यह उस दिन दोपहर की बात थी, नल पर बर्तन मांजने मलने की आवाज़ थम गई थी। खाने का बड़ा कमरा खाली पड़ा था, कुछ नौकर किचन की दहलीज पर बीड़ियाँ फूंकते बैठे गप्पे हाँक रहे थे, दो एक चटाइयों पर पसरे हुए थे। तभी दीनू उठा था और उसने रसोई घर के चूल्हे के पीछे खाने की प्लेट उठाई थी और उसे एक और प्लेट से ढककर बाहर निकल आया था और अपने कमरे की ओर जाने लगा था। वह बरामदा लांघकर मुड़ा ही था कि उसे भास हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई दबे पांव चला आ रहा है। दिनू ठिटका तो पीछे से आवाज आई थी, किसके लिए खाना ले जा रहा है दिनू? दिनू ने मुड़कर देखा था, मंगलू था, हॉस्टल का सबसे चंट नौकर, पतली काली मूछें और गले में कंठी, 4 नंबर वाले बाबू के लिए। 4 नंबर? वह तो खाना खा चुका है, उधर ही थोड़ी देर पहले खाकर गया है। उसका कोई मेहमान आया है, उसके लिए ले जा रहा हूँ। मंगलू हंसने लगा था। वहाँ तो ताला चढ़ा है, चल दिखा दूँ। दिनू खिसिया गया था पर जल्दी ही संभल भी गया। या उस हरामी तेजू का कसूर है, 4 नंबर का बाबू बार बार खाना मंगाता रहा, यह लेकर नहीं गया। अब मैंने सोचा मैं ले जाऊं, पर मंगलू पर नज़र गई तो वह मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे अपनी रान खुजला रहा था। बता कौन है, मंगलू ने धीमी आवाज़ में कहा था और फिर आंख मार कर मुस्कुराया था। दिनू अंदर ही अंदर बहुत शक पकाया, लेकिन कोई रास्ता न सूझ पाने के कारण लहजा बदल कर अपनी सफाई सी देने लगा। गांव से घरवाली आ गई है यार, क्या करूं, कल रात सीधी चली आई। बसंत नगर में उसका चाचा पृष्ठ संख्या 95 रहता है, पर उस वक्त मैं उसे कहाँ छोड़ने जाता। पर दीनू ने देखा कि मंगलू अजीब नज़र से उसकी ओर देखे जा रहा है और अभी भी मुस्कुराए और रान खुजलाए जा रहा है। हमें भी एक डुबकी लगा लेने दे, मंगलू ने फिर से आंख मारते हुए कहा था। तू कोठरी में नहीं जा, मैं ही खाना ले जाता हूँ। इस पर दीनू बौखला उठा था और भभक कर बोला था, साले प्लेट तेरे मुंह पर मारूंगा, कह रहा हूँ मेरी बीवी है, बक बक किए जा रहा है। पर उसके दूसरे ही दिन सुपरिनटेंडेंट ने दीनू को अपने दफ्तर में तलब किया था और 1 घंटे के अंदर कमरा खाली कर देने का हुक्म दे दिया था। नौकरी छूट जाने के बाद दीनू और बसंती दीनू के एक दोस्त बरडू के खोखे में जाकर रहने लगे थे। तभी सहसा बसंती की आंखों के सामने वह दृश्य भी घूम गया जब उसका साक्षात बरडू से हुआ था, और पहले एक कपकपी उसके सारे शरीर में दौड़ गई और फिर क्रोध की लहर सी उठी और रंगोटे खड़े होने लगे। वे लोग रात के वक्त बरडू के खोखे में पहुँचे थे। सुबह उठने पर उसने आसपास के इलाके को देखा था। सतनगर को जाने वाली सड़क के किनारे एक गहरी ढलान सी थी और इस ढलान पर बहुत से छोटे छोटे लकड़ी के खोखे बने थे, और इन्हीं में से एक खोखे में बरडू रहता था। लकड़ी के टूटे फूटे तख्ते और खपनिया जैसे तैसे जोड़कर एक खोखे बनाए गए थे। हर खोखे के दरवाजे पर फटे टाट या थिगलियाँ लटक रही थीं, टूटी ईंटें, लोहे के टुकड़े, टीन कनस्तर, जिसे जो मिला उसी से उसने कीलें ठोक ठाक कर खोखा खड़ा कर लिया था। ऐसे बीसियों खोखे वहाँ पर खड़े थे। यहाँ दिन भर सुअर घूमते और बड़े बड़े चूहे भी, और यहीं पर से सतनगर और आसपास की बस्तियों का सारा कचरा ट्रकों से उठता था। अनेक स्त्रियाँ कंधे पर से बड़े बड़े झोले लटकाए सतनगर की सड़कों पर फटे कागज, कांच के टुकड़े, खाली डिब्बे झपट झपट कर बटोरती फिरती थीं, और छोटे छोटे बच्चे कचरे के ढेरों में कुछ न कुछ ढूंढते बीनते रहते। खाली बोतलें, अध टूटे प्याले, ऐसे ही लोग खूंखों में रहते थे। वहीं पर बरडू रहता था और वहीं पर बसंती और दीनू भी पृष्ठ संख्या 96 रहने लगे थे। कुछ दिन तक तो वह बरडू के खोखे में रहे, फिर दीनू ने नज़दीक ही सतनगर के पास एक कच्ची सी कोठरी किराए पर ले ली। यहीं पर एक दिन सुबह जब बसंती ने आँख खोली तो देखा कि दीनू खाट पर नहीं है। वह आंखें मलती हुई बाहर आई तो कोठरी के बाहर जमीन पर वरडू बैठा था, फटी पुरानी सी चादर ओढ़े हुए, मैला गंदा सा वरडू। दीनू कहाँ है, बसंती ने पूछा। इस पर वरडू अपने मैले मैले दांत दिखाते हुए हंसने लगा था। दीनू अब नहीं आएगा, क्यों, वह चला गया है? कहाँ चला गया? बसंती की आंखें फैल गई थीं। अपने गांव चला गया। कुछ दिन से दीनू गांव जाने की बात कह रहा था। वह कहता था कि गांव में फसल बेचकर कुछ पैसे लाएगा, लेकिन वह इस तरह कुछ भी बताए बिना चला जाएगा। बसंती को विश्वास नहीं हुआ। बरडू का पिचका हुआ चेहरा, मैली फटी हुई चादर और रूखे उड़ते हुए बाल उसकी बदहाली की कहानी कह रहे थे। तू यहीं पर बनी रह, बरडू बोला था, तू किसी बात की फिक्र नहीं कर, तभी बसंती को खटका हुआ था। तुझे दीनू कुछ कहा गया है? क्या कहता था? कहाँ गया है? दीनू अब नहीं आएगा, बोल जो दिया। अब नहीं आएगा? तुम्हें क्या? मुझे क्यों नहीं? वह अपने मैले मैले दांत दिखाते हुए हंसकर बोला, मैंने जेब से 300 रुपये दिए हैं। किस बात के 300 रुपये? 300 रुपये देकर तुझे लिया है और क्या? बसंती की आंखें फैल गईं। वरडू क्या कह रहा है? पृष्ठ संख्या 97। शर्म नहीं आती? अपने को दीनू का दोस्त कहता है। कल तक तो भाभी भाभी कहता फिरता था। लेकिन बरडू की बात बसंती के मन में चुभ गई थी। गई रात दीनू की जेब में 300 रुपये जरूर थे, और उन्हें देखकर बसंती हैरान भी हुई थी। पूछने पर दीनू ने बताया था कि उसने अपनी साइकिल बेच दी है, पर उसकी साइकिल अभी भी कोठरी के अंदर खड़ी थी। जब से हॉस्टल की नौकरी से दीनू बर्खास्त हुआ था, वह कोई काम धंधा नहीं करता था, ना ही काम धंधे की तलाश में बाहर जाता था। बर्डू के साथ ही सारा दिन घूमता रहता था। तो उसकी घरवाली नहीं है? उसकी घरवाली गांव बैठी है, जिसके पास वह गया है। वह तुझे मेरे हाथ बेच गया है। मैं तेरे संग ढंग से ब्याह करूंगा, घर बिरादरी के लोगों को लाऊंगा, पैसे खर्च करूंगा। सहसा बसंती हंस दी थी। उसे न जाने कहाँ से साहस आ गया था। वह चुपचाप अंदर गई और अंदर से कुर्सी को लगाने वाला ताला उठा लाई और किवाड़ भेड़ कर कोठरी को ताला लगा दिया। मैं कैसे मान लूं कि वह मुझे तेरे हाथ बेच गया है? मैं जो कह रहा हूं, वह तो तेरे हाथ अपनी साइकिल बेच गया है बर्डू, मुझे नहीं बेच गया। साइकिल के अलग पैसे दे दिए हैं, 100 रुपये। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए बर्डू? रहता तो खोखे में है। तुझे खोखे में नहीं रखूंगा। तू इसी कोठरी में बनी रह, मैं भी यहीं आ जाऊंगा। बातों बातों में बसंती कोठरी के दरवाजे पर से हट गई और धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगी। कहाँ जा रही है तू? बारात ले आ, मैं अभी आती हूँ। बरडू बसंती के पीछे लपका, लेकिन बसंती फुर्ती से छोटा सा मैदान पार कर सड़क तक जा पहुंची। पृष्ठ संख्या 98। कहाँ जा रही है? चुपचाप लौट आ, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा। वाह जी, उठा के ले जाएगा, बड़ा आया रावण। और बसंती ने रफ्तार तेज कर दी और भागती हुई सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर आवाजाही थी, साइकिलें और स्कूटर चलने लगे थे। चलते चलते ही बसंती ने घूम कर कहा, जमुना जी में जाकर डूब मर, इधर नीचे गंदे पानी का ताल है, उसी में डूब मर। अपने दोस्त की घरवाली को उठाने आया है। और बसंती आगे बढ़ गई। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरे 300 जेब से दिए हैं, अभी भी लौटा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर बसंती आगे बढ़ती गई थी और शीघ्र ही सतनगर की गलियों में खो गई थी। उस वक्त वरडू के चंगुल से बसंती निकल तो आई थी, पर ना तो बरडू ने उसे छोड़ा था और ना ही वह कोई अपना ठौर ठिकाना बना पाई थी। कुछ दिन तक तो बसंती छिपती फिरी थी, रमेश नगर को छोड़कर दिल्ली में जहाँ कहीं वह किसी को जानती थी, बसंती उसी के पास जा पहुँची थी। पर दो एक दिन ठहरने के बाद वहाँ से भी उसे निकल जाना पड़ता, और बरडू हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। कहीं ना कहीं से बसंती का सुराग निकाल ही लेता और उस बसंती के पास मंडराता हुआ दिख जाता। कुछ दिन के लिए वह खान मार्केट के पास एक घर में चौका बर्तन भी करने लगी थी और रात को फ्लैट के बाहर बरामदे में पड़ी रहती थी। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। बर्डू का साया वहाँ भी पहुँच गया। फिर एक दिन अपने स्वभावानुकूल वह यों ही किसी बस में बैठ गई और जिस ओर बस जा रही थी उसी ओर निकल गई। वहाँ अचानक सड़क पर चलते हुए उसे लाली मिल गई, जो बस्ती में दो कोठरियाँ छोड़ तीसरी कोठरी में रहा करती थी। लाली ने इसकी बड़ी आवाभगत की, इसे एक जगह पर काम भी ले दिया, सोने रहने का प्रबंध भी कर दिया। पर यहाँ कुछ ही दिन में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उसे बार बार पृष्ठ संख्या 99 मतली आने लगी थी, तबीयत खराब रहने लगी थी। श्यामा बीबी के सामने बैठी बसंती के मन में अनेक घटनाएं चक्कर काट रही थीं। श्यामा बीबी को वह क्या बताए, क्या नहीं बताए? वह घर तूने क्यों छोड़ दिया? बसंती क्या बतलाए कि क्यों छोड़ दिया था? वहां से निकली तो बसंती अपनी कोठरी में लौट आई, पर केवल 2 दिन तक ही ठहर पाई। उसे याद करते हुए बसंती हंसने लगी। क्यों हंसती क्यों है? मैं ताला खोल कर अंदर गई तो बीबी जी, मुझे एक ख्याल आया। मैंने अंदर से सांकल चढ़ा दी, पर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी, उधर से एक लड़का जा रहा था। मैंने उसे खिड़की में से ताला पकड़ाते हुए कहा, इस कोठरी पर ताला लगा दो। मुझे मालूम था बीवी जी की बरडू वहाँ जरूर आता होगा। बाहर ताला चढ़ा, देखेगा तो समझेगा कि अभी तक नहीं लौटी। इस पर बसंती फिर से हंसने लगी। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? ओ बीवी जी, दोपहर को जब मैं सोकर उठी थी और किवाड़ की दरार में से बाहर झांक कर देखा तो सचमुच बरडू वहाँ बैठा था। एक और आदमी भी उसके साथ था। मैं तो डरी कि अब क्या होगा, पर शाम तक बैठा रहने के बाद वह वहाँ से चला गया। तब मैं भी किसी तरह वहाँ से निकल आई। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई। फिर कहाँ पर रही? ओ बीवी जी, अब क्या क्या आपको बताऊँ, एक दिन तो मेरी समझ में नहीं। ओ बीवी जी, अब क्या क्या आपको बताऊँ, एक दिन तो मेरी समझ में ही नहीं आए कि कहाँ जाऊँ। मतली उठती थी ना, मतली नहीं उठती तो मैं परवाह भी नहीं करती, पर मतली उठती थी तो सच बीवी जी, मैं सीधी अपनी बहन के घर जा पहुँची। मैंने कहा, होने दो, जो होता है। अब मैं क्या करूँ? श्यामा बीवी बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगी। पृष्ठ संख्या 100। वह विनय नगर में रहती थी। मैंने सोचा मैं उससे कह दूंगी तो वह किसी को बताएगी भी नहीं, और विजयनगर दूर भी पड़ता है। बापू और बरडू को खबर होते होते मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। फिर क्या बीवी जी, मैं वहाँ बस 3 दिन ही टिक पाई। क्यों, क्या पूछती हो बीवी जी? उसका घर वाला उल्लू का पट्ठा है? क्यों, सभी बीवियों के घर वाले उल्लू के पट्ठे होते हैं बीवी जी। और बसंती हंसती, क्यों क्या बीवी जी, बस वह उल्लू का पट्ठा है। फिर स्वयं ही सुनाने लगी। मैं अंदर कोठरी में सोई थी और ए मियाँ बीबी अपने बच्चों के साथ बाहर सोए थे। मैं अंदर बेसुध पड़ी थी, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी खाट पर बैठ गया। मेरी नींद खुल गई। पहले तो मैं समझी ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं नींद में थी ना, मुझे लगा मैं हॉस्टल के कमरे में हूँ और दिनों काम निपटा कर आया है। वह भी अंधेरे में आता था ना बीवी जी, सच में एक और हो गई कि दिनू भी खाट पर लेट जाए। फिर मैंने कहा, अरे यह तो मेरी बहन का घर है, यह कौन है? मैं हड़बड़ा कर उठी तो उसने मेरे हाथ पर मुंह रख दिया। हरामी की औलाद बीवी जी, वह बहुत बुरा आदमी है। फिर क्या बीवी जी, मेरी बहन को खटका हुआ और वह जाग गई। पहले तो बाहर से ही बोली, क्या बात है बसंती, तू सोई नहीं? फिर वह उठकर अंदर आ गई। बसंती हंसने लगी। वह हरामी बोला, मैं तो अंदर पानी पीने आया हूँ, पर पानी का घड़ा बाहर रखा हुआ था। आ, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, मेरी बहन ने कहा और उसे खींच कर बाहर ले गई। तेरी बहन से डरता है? श्यामा बीवी ने टिप्पणी की। कौन डरता है बीबी जी, कोई किसी से नहीं डरता। मेरी बहन चिल्लाती है, बोलती है, गालियाँ देती है और फिर चुप हो जाती है। श्यामा बीबी बसंती की ओर देखे जा रही थी और सोच रही थी कि पिछले पृष्ठ संख्या 101 कुछ एक महीनों में ही बसंती कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब यह पुरुषों के स्वभाव पर टिप्पणी भी करने लगी है। मैं दूसरे ही दिन वहाँ से चली आई बीबी जी। वहाँ पर रहती तो मेरी बहन भी मुझ पर शक करने लगती, कहती मेरे घर वाले पर डोरे डालने आई है। और मुझे इस बात का भी डर था कि बरडू को पता चल जाएगा, मर्द लोग तो घूमते रहते हैं ना। बीवी जी, मेरी बहन का घर वाला ही उसे बता देता। उसे पता चला? श्यामा ने घबरा कर पूछा। बरडू यहाँ तो नहीं आ जाएगा, खबरदार, यहाँ किसी को मत आने देना। मैं क्यों आने दूंगी बीवी जी, मैं तो खुद उससे भागती फिरती हूँ। मैं तुझसे कहूँ बसंती? क्या बीबी जी, चुपचाप अपने माँ बाप के पास चली जा, वहाँ तो बूढ़ा दर्जी चक्कर काटता है बीबी जी। बाप मुझे चुटिया से पकड़ कर उसके साथ बांध देगा, उसने दर्जी से पूरे 900 रुपये ले रखे हैं। तुमने खुद यह सब बखेड़ा मोल लिया है। क्यों बीबी जी, मैंने क्या किया है? अब तेरा बच्चा होगा तो उसे कहाँ रखेगी और खुद कहाँ रहेगी, कहाँ सिर्फ छिपाएगी? तभी श्यामा को ध्यान आया कि उसने बसंती से यह तो पूछा ही नहीं कि आजकल कहाँ रहती है, अब कहाँ पर टिकी है। कहीं भी नहीं बीवी जी। क्यों, तू तो बता रही थी कि एक कोठरी तेरे पास है। वहाँ कैसे जाऊँ बीवी जी, वहाँ तो बरडू बैठा है। और सहसा बसंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर जाऊँ तो बाप बैठा है, उधर जाऊँ तो बरडू बैठा है। इस पर श्यामा बीवी गंभीर आवाज में बोली, क्या मालूम बसंती, दिनू तुम्हें उसके हाथ बेच ही गया हो। बसंती चुप रही। पृष्ठ संख्या 102। अगर तेरा बाप तुझे बूढ़े के हाथ बेचने के लिए 900 रुपये वसूल कर सकता है तो दीनू क्यों नहीं 300 लेकर तुझे बेच सकता। बसंती अभी भी चुप थी और अपलक श्यामा की ओर देखे जा रही थी। फिर धीरे से बोली, नहीं बीबी जी, वह तुझे छोड़कर चला गया है, अब वह लौट कर नहीं आएगा। वह आएगा बीबी जी। इतना कुछ सहने, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी श्यामा बीवी को बसंती की आंखों में बाल सुलभ विश्वास झलकता हुआ दिखाई दिया। विश्वास की पतली सी डोरी टूटने में नहीं आती थी, उसी पर बसंती की जिंदगी झूल रही थी। तू तो पागल है बसंती, ना उसने कोई संदेशा भेजा है, ना तेरी सुध ली है, फिर भी कहे जा रही कि वह आएगा बीबी जी। अगर वह नहीं आया तो वह आएगा बीबी जी, तू तो पागल है। श्यामा हैरान थी, क्या सचमुच इसे इस बात का यकीन है कि दीनू ने इसे नहीं बेचा है? इतना कुछ देखने समझने के बाद भी यह अनजान बनी हुई है? क्या यह कोई फिल्मी सॉन्ग तो नहीं रच रही है जैसे पहले रचा करती थी? एक तरह का मन भुलावा कि वह इस कहानी की बिरहिणी नायिका है जो तरह तरह की मुसीबतें झेल रही है, इस विश्वास के साथ कि उसका वीर नायक एक दिन जरूर लौटेगा। ये फिल्में देख देख कर ही तेरा दिमाग खराब हुआ है। बसंती मुस्कुरा दी। अब तो बहुत दिन हो गए हैं बीवी जी, मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी। आज कौन सी फिल्म है टीवी पर? आज शनिवार है ना? फिल्में नहीं देखती तो इस वक्त चैन से घर में बैठी होती। श्यामा के वाक्य को बसंती ने पूरा किया, और घर में बैठी बूढ़े दर्जी के पांव दबा रही होती, या फिर गांव में घास छील रही होती। अब तुझे क्या मिल गया है? घर न घाट। पृष्ठ संख्या 103। घर घाट क्या होता है बीवी जी, जहाँ बैठ जाओ वहीं तो घर हो जाता है, बसंती ने कहा। फिर तनिक उत्तेजित होकर बोली, यह आप क्या कहती हैं बीवी जी, घर घाट क्यों नहीं है? घर भी है, मेरा मर्द भी है, अब बच्चा भी होगा, वह जब लौट आएगा तो फिर से अपने घर में रहने लगूंगी। इस पर श्यामा बीवी से नहीं रहा गया, झट से बोली, अगर उसका ब्याह हो चुका है तो वह तुझे क्यों बसाएगा? बसंती ठिठकी और श्यामा बीबी के चेहरे की ओर देखने लगी। फिर सिर हिलाकर बोली, ब्याह हुआ है बीबी जी, पर वह आएगा। क्यों, दो दो बीबियां वह कैसे रख सकता है? उसकी जात में दो दो बीबियां रख सकते हैं बीबी जी, कोई भी आजकल दो बीबियां नहीं रख सकता। वह रख सकता है बीबी जी, उसकी जात में दो बीबियां छोड़ तीन तीन भी रख सकते हैं। तुझे किसने कहा? दीनू ने, और तूने मान लिया? बसंती की आंखों में आशा और विश्वास की झलक देखकर श्यामा को वह और भी अधिक दयनीय लगी। मैंने उससे कह दिया है, बसंती कह रही थी, तू अपनी बीवी को यहाँ ले आ। उसकी बीवी तो गांव की है ना बीवी जी, बिल्कुल गंवार है, कुछ भी नहीं जानती। मैं घर चलाऊंगी, इतने धोखे खा चुकी है। पर तू फिर भी होश में नहीं आई, तू जिंदगी में बहुत दुखी होगी बसंती, श्यामा बीवी ने दांतों तले होंठ दबाकर सिर हिलाते हुए कहा। जिंदगी क्या होती है बीवी जी, बसंती ने कहा और हंस दी। उसकी हंसी में पहले जैसी गूंज फिर से सुनाई पड़ी। नहीं बीवी जी, वह आएगा, बसंती की फुसफुसाती सी आवाज आई। उसके बच्चा नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं है, मेरा बच्चा होगा तो वह मुझे ही अपनी घरवाली मानेगा। पृष्ठ संख्या 104। कैसी बाकी बाकी बातें कर रही है बसंती, तेरे साथ तो उसकी शादी भी नहीं हुई, वह किसी दिन भी तुझे घर से निकाल सकता है, तुझे छोड़कर भाग गया है या नहीं। बसंती की आंखों के सामने फिर एक बार उसके तथाकथित विवाह का दृश्य घूम गया। बरामदे में छिटकी चांदनी, ऊंचा लंबा दीनू, उसके बालों में खोसे हुए फूल। छिटकी चांदनी का वह दृश्य आंखों के सामने आने की देर थी कि बसंती के अंदर अलबेलेपन की एक लहर सी उठी और सभी शंकाएं और चिंताएं उसमें डूब गईं। अल्हड़पन और आंतरिक उल्लास का ज्वार सा उठा। ऐसे ही मतवालेपन में बसंती हाथ बढ़ाकर दीनू के बाल बिखेर दिया करती थी, दोनों हाथ फैलाकर थिरक थिरक कर नाचने लगती थी, घूम घूम कर गाने लगती थी। बसंती झट से उठ खड़ी हुई, लाओ बीबी जी कमरे में झाड़ू लगा दूं। वह पहले ही की तरह चहक उठी। बैठी रहा बैठी रहा, श्यामा बीबी ने कहा। नहीं, मैं तो लगाऊंगी, तेरा पैर भारी है, तू क्या झाड़ू लगाएगी? मेरी माँ बच्चा जन्मने के दिन तक झाड़ू लगाती रहती हैं, उसे कुछ नहीं होता, मुझे क्या होगा? और बसंती ने झाड़ू उठा लिया और बरामदा लांघ कर पिछले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में से बसंती के गीत गुनगुनाने की आवाज़ आई, तुम दीप जले आना, तुम सांझ ढले आना। फिर फिर सहसा बसंती बरामदे में आकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अगर वह नहीं आया बीबी जी, तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊंगी बस, कहते हुए बसंती की आंखें भर आईं और घूमकर वापस जाने लगी। नहीं आया तो नहीं आया, उसने कहा और टपकते आंसुओं के बीच फिर कमरे में जाने से पहले घूमकर बोली, मगर वह आएगा बीबी जी, वह जरूर आएगा। बसंती कमरे में चली गई और गुनगुनाते हुए झाड़ू लगाने लगी। उसके पीठ पृष्ठ संख्या 105 मोड़ने की देर थी कि श्यामा का मन किसी दूसरी ओर ही चल पड़ा। इस लड़की के साथ मैं बहुत हिल मिलकर बातें करती रही हूँ, कहीं भूल तो नहीं कर रही हूँ? अब यह पहले वाली बसंती तो नहीं, अब तो घाट घाट का पानी पी चुकी है। अपने आप ही झाड़ू उठाकर पिछले कमरे में चली गई। वहाँ मेरी कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, एक आध चीज़ उठा ले तो मुझे क्या पता चलेगा। आजकल तो इसे ज़रूरत भी रहती होगी, क्या मालूम किस काम से आई है। इतने दिन तक नहीं आई, आज ही क्यों दौड़ी चली आई है, और वह भी दिन दहाड़े। क्या मालूम चोरी चकारी करने लगी हो। इसकी बातों में सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ पता नहीं चलता। श्यामा ने उसे आवाज़ देकर वापस बुला लिया। कोई ज़रूरत नहीं झाड़ू लगाने की, बैठ जाए इधर। आपके बाल बना दूँ बीवी जी? बिल्कुल हेमा मालिनी जैसे बनाऊंगी, और ठहाका मारकर हंसती, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं, तू बैठ जा इधर। बसंती को पहले की तरह श्यामा बीवी के साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है। दोनों फिर एक दूसरे के सामने बैठी थी। श्यामा की आंखों में दूरी आने लगी थी, बसंती उसकी आंखों से दूर होती जा रही थी। एक तरह का परायापन उसकी आंखों में उतरने लगा था, जबकि बसंती की आंखों में आत्मीयता हिलोरें ले रही थी। यही एक बीबी है जो मेरा हाल पूछती है, यही एक बीबी है जिसके घर की सीढ़ियां मैं रात हो या प्रभात सीधे चढ़कर अंदर आ सकती हूँ। पर श्यामा की आंखों में संशय उतर आया था। अब यह पहले वाली नटखट लड़की नहीं रह गई है, अब इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी घर से भाग रही है, जाने कहाँ रहती है, क्या करती है। तू रात को कहाँ सोती है, श्यामा ने सहसा पूछ लिया। आज की रात तो मैं आप ही के घर में सोऊंगी बीवी जी, मैं अपनी खाट भी उठा लाई हूँ, नीचे आंगन में रख दी है। तू पागल हो गई है बसंती, श्यामा ने घबरा कर कहा। इधर दो घर छोड़कर तेरा बाप बैठा है, उसे पता नहीं चल जाएगा? वह पहले से ही समझ रहा है कि मैंने तुझे भगा दिया है। पृष्ठ संख्या 106 उसे कुछ पता नहीं चलेगा बीबी जी। कैसे पता नहीं चलेगा, मोहल्ले भर में तेरे पीछे गिद्ध मंडराते फिरते हैं। बड़रू तुझे छोड़ देगा यहाँ आधम का, तो तेरा बाप पूछ गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बीबी जी, बसंती ने कहा। फिर अपने आप ही बोली, अच्छा मैं छत पर सो जाऊंगी, वहां तो किसी को पता नहीं चलेगा। तू छत पर सोएगी तो हम कहाँ सोएंगे, और तू सुबह छत पर उठेगी तो आसपास के लोग तुझे देख नहीं लेंगे, कैसी बातें कर रही है। फिर मैं कहाँ जाऊँ, बसंती ने लाड़ से कहा। श्यामा बीबी घबरा गई थी, बसंती के यहाँ सोने में तो खतरा ही खतरा है। बसंती अपने बाप से भी छिपती फिरती है और बड़ू से भी, ना जाने यहाँ बड़ू कौन है, कोई लुच्चा लफंगा होगा तो इसके पीछे पड़ गया है। यहाँ पर तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ना बाबा ना, यहाँ पर तो मैं तुझे नहीं सोने दूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी बीवी जी, दो तीन दिन की ही तो बात है, फिर मैं तो कहीं काम ढूंढ लूंगी। श्यामा बीबी इतना घबरा गई थी कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि गर्भ के कारण बसंती बहुत थकी थकी और निस्तेज हो रही है, और शायद सचमुच ही सिर छिपाने के लिए उसके पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है। सुन बसंती, तू मेरी मान, सीधी अपने बाप के घर चली जा, वही तेरा घर है, अच्छा है बुरा है वही तेरा घर है। ओ बीवी जी आप भी क्या खाती हैं, दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है कि अपने घर लौट जा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, कुछ दिन तो आराम से रहेगी। तभी बसंती के अंदर कुछ चटक सा गया, वह श्यामा बीबी की ओर देखती रह गई। थोड़ी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही, फिर बसंती पहले की ही तरह अल्हड़ सी आवाज में बोली, तो क्या बीवी जी, कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाऊंगी। श्यामा उसके मुंह की ओर देखने लगी, उसकी छाती पर से बोझ हट गया। पृष्ठ संख्या 107 पर उसे लगा जैसे बसंती के दिल को ठेस पहुंची है। कहाँ चली जाएगी, अंदर से राहत महसूस करते हुए भी श्यामा ने चिंतित आवाज में कहा। मैं जानती हूँ तू बड़ी होशियार है, कहीं चली जाऊँगी बीबी जी, बसंती ने कहा और उठकर खड़ी हुई। ध्यान रखना, कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं कर बैठना, श्यामा बीबी ने चिंतातुर आवाज़ में कहा। बसंती जब सीढ़ियों की ओर मुड़ी तो श्यामा बीबी ने झट से अपना बटुआ खोलकर और उसमें से पैसे निकालते हुए बोली, ठहर रुक जा या थोड़े पैसे लेती जा। और श्यामा बीबी ने 5 का नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। रहने दो बीबी जी, मेरी गुजर चल रही है, बसंती ने कहा। बसंती सीढ़ियाँ उतर रही थी तो श्यामा बीवी कमरा लांघ कर छज्जे पर जाकर खड़ी हो गई, यह देखने के लिए कि बसंती किस तरफ जाती है, क्या करती है। शाम उतर आई थी और बाहर छुटपुटा सा छाया था। बसंती सीढ़ियाँ उतर कर आंगन में पहुँची। वह दीवार के साथ रखी खाट की ओर बढ़ ही रही थी कि श्यामा का मन शंकित हो उठा। उसे अपने गुरु महाराज याद हो आए। उसे सहसा इस बात का वहम होने लगा कि बसंती की खाट आंगन से उठ गई तो गुरु महाराज को दिया वचन भंग हो सकता है, उस पर कोई मुसीबत आ सकती है, कोई अनिष्ट हो सकता है, खाट को वहीं पड़ा रहने दे। श्यामा बीबी ने ऊपर से आवाज लगाई, क्यों बीबी जी? बसंती ने ऊपर छज्जे की ओर देखते हुए कहा, उसे वहीं रखा रहने दे। क्यों बीबी जी, कोई उठा ले गया तो? कोई नहीं उठाएगा, उसे वहीं रखा रहने दे। बसंती क्षण भर के लिए असमंजस में ठिठकी रही, फिर फाटक की ओर बढ़ने लगी। ओ बसंती, छज्जे पर से श्यामा की फुसफुसाती सी आवाज आई, क्या बीबी जी? ठहर ठहर रुक जा, इधर सीढ़ियों से जा। पृष्ठ संख्या 108। बसंती लौट कर सीढ़ियों में आ गई। श्यामा बीबी छज्जे पर से हट गई और सीढ़ियों के सिरे पर आकर खड़ी हो गई। बाहर जा रही है, अगर पकड़ी गई तो? बसंती सीढ़ियों की दीवार के साथ हाथ रखे ऊपर की ओर देखकर शिथिल से मुस्कान के साथ बोली, तो क्या बीवी जी? श्यामा बीवी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बसंती को वह अपने घर में तो नहीं रख सकती, यह बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन अगर वह इस तरह से चली गई और श्यामा के साथ कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा? भाग्य का कोप उस पर टूटा तो वह क्या करेगी? रुक जा रुक जा, मैं तेरा इंतजाम कहीं और करा देती हूँ, वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। आ जा लौटा। कहाँ बीवी जी? 17 नंबर में मेरी सहेली के घर, वहाँ वह तुझे सुला लेगी। आ जा लौटा। कुछ नहीं होगा बीबी जी, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं रुक जा, लौटा। और बसंती सीढ़ियों के नीचे मुस्कुराती ठिठकी खड़ी रह गई।